अस्सलाम वालेकुम, ये पार्ट नंबर 4 है। आज हम आपके लिए किताब रिकॉर्ड कर रहे हैं, जासूसी दुनिया, जिल्द नंबर 26, नावल नंबर 79, चांदनी का धुआं, जिसके मुसनिफ हैं इब्ने सफी। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 4। यही वाकया पेश आया था आपको, हमीद ने मतवाना अंदाज में पूछा। बिल्कुल यही, और अभी तुमने भी किसी औरत की आवाज सुनी है? हाँ, हमीद ने तवील सांस ली और फिर बोला, मेरी जिंदगी की बजाय खुद किसी औरत की आवाज है जो होले होले मध्यम सुरों में गा रही हो। अरे बाप रे बाप! इस बार हमीद कुछ ही समय दूसरी तरफ उलट गया, क्योंकि कोई औरत होले होले मध्यम सुरों में गा रही थी। वो बुखरा कर उठा और खौफ ज्यादा आवाज में चीखा, सुना आपने आसिफ साहब? नहीं, आसिफ इससे भी ज्यादा खौफ ज्यादा नजर आ रहा था। वो गीत सुना रही थी। नहीं, आसिफ थूक निकलकर होठों पर जबान फेरने लगा। हमीद पलके झपकाना भूल गया। अचानक इसने एक किसी खौफजदा बच्चे की तरह फाड़ते देखा। हलक से एक चीख आवाज आजाद हुई और आसिफ को गिरता पड़ता कमरे से भागा। अरे अरे हमीद, इसने इसके पीछे छलांग लगाई और दोनों ही ऊपर तले राजदारी में ढेर हो गए। इस बार इसने भी औरत का कहका सुना, गालबन आसिफ भी सुन रहा था और हमीद के नीचे से निकल भागने की कोशिश कर रहा था। हटो हटो हटो, वो बुरी तरह मचलाया। हमीद एक जाने से लड़क किया और आसिफ उठकर भाग गया। तो चौबी फरश पर इसके कदमों की आवाज काफी तेज थी। हमीद भी उठकर उठा, मगर अब रायदारी में सुनसान पड़ी थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था अब इससे क्या करना चाहिए। कुछ भी हो, वो इतना बदहवास तो नहीं हुआ था जितना आसिफ हो गया था। इसने अपना लिबास दुरुस्त किया, टाई की गिरा संभाली और डाइनिंग हॉल की तरफ चल पड़ा। कमरे में दाखिल होने की हिम्मत तो इसकी भी नहीं थी। इसकी दानस में वो कोई आसेबी खलल था, वरना ये कैसे मुमकिन हो था कि एक आदमी इस नामालूम औरत की आवाज सुनता है और दूसरा इससे लाइल्म रहता है। डाइनिंग हॉल में इसे आसिफ साफ नजर आया, जो एक कुर्सी की पुश्ते टेक लगाया हुआ बुरी तरह कांप रहा था। परवाह मत कीजिए, हमीद इसके करीब पहुंचकर बोला, मैं इस कलर की खबर लेता हूं जिसने हमसे नजराना भी वसूल कर लिया। आसिफ कुछ बोला नहीं, वो फटी फटी आंखों से इसे देख रहा था। हमीद काउंटर की तरफ मुड़ गया, कलर कायम करने वालों के रजिस्टर पर झुका हुआ था। इधर देखो, हमीद इसके सर पर पहुँच कर खर्राया। फरमाइए जनाब, वो चौंककर बोला, तुमने मुझे इस कमरे के मुतालिक बताया क्यों नहीं था? मैं क्यों बताता, मैं समझता हूँ कि लोग वहम में मुब्तला हैं और तुमने दूर 2 रुपए भी हजम कर लिए। मैंने आपसे किसी किस्म का रकम का मुतालबा नहीं किया था, आपने खुशी से दिए थे, मैंने रख लिए, इनकार क्यों करता? अगर तुम मुझे बता देते कि वो कमरा आसिफ ज्यादा है, आप कभी यकीन ना करते। कलक दरमियान ही मैं बोल पड़ा, यही समझते हैं मैंने किसी दूसरे से रिश्वत ली ले रखी है, कोई भी नहीं यकीन करता, इसलिए मैं इन्हें इनके हाल पर छोड़ देता हूँ। ये कब से आसिफ ज्यादा है, इसके मुतालिक आपको सुपरवाइजर ही बताएगा। हमीद थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर सुपरवाइजर के कमरे की तरफ मुड़ गया। ये एक दुबला पतला और यरकान ज्यादा सा आदमी था। इसने हमीद को गौर से देखा और एक तवील सांस ली, फिर बोला, तशरीफ रखिए जनाब। हमीद ने बैठते वक्त इसकी मेज पर एक जोरदार घूंसा तकीद किया। नहीं नहीं जनाब, मैं बहुत कमजोर दिल का आदमी हूँ, ये देखिए। धड़कन सुपरवाइजर अपनी नफ्स टटोलता हुआ बरहाई हुई आवाज में बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वो कमरा आसिफ ज़दा है? हमीद दहाड़ा, आस्ता जनाब आस्ता। सुपरवाइजर खलखला कर, खुदा के लिए आस्ता बोलिए वरना मेरा हार्ट फेल भी हो सकता है। मैं आपको डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ, ये देखिए। इसने मेज की दराज खींची। नहीं, हमीद हाथ हिलाकर बोला, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं पूछता हूँ तुमने मुझे इस कमरे के मुतालिक बताया क्यों नहीं? कोई यकीन नहीं करता, वैसे आप कुछ सोचिए, क्या ये मौजा नहीं है? इस सीजन में आपको फरोजा का कोई कमरा खाली नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में हमने लोगों को बताया, मगर वो कमरा आसिफ ज्यादा है। लेकिन लोग यही समझते थे कि हम इसे किसी मकसद के तहत खाली रखना चाहते हैं, इसलिए इन्हें कमरे देने पर तैयार नहीं है। पर अक्सर झगड़ा भी हो गया, फिर हमने ये कहना भी छोड़ दिया कि वो आश्रयदाता है। लोग आते हैं और खुद ही बुकला कर चले जाते हैं, किसी बात का तस्करा तक नहीं करते। आप पहले आदमी हैं जिसने इसका तस्करा किया। ये कब से आश्रयदाता है? पिछले 1 साल से। इसका लतीफा भी दिलचस्प है जनाब, सुपरवाइजर मुस्कुराया। पिछले साल एक साहब तशरीफ लाए थे, क्या नाम है? हाँ, कर्नल वाड़े साहब। भला नाम कैसे भूल सकता हूँ, मेरे जहन से चिपक के रह गया है। अजीब गरीब शख्सियत थी। हाँ, तो वो तशरीफ लाए थे, वो कमरा खाली था, मगर इसकी बुकिंग एक सरकारी ऑफिसर के लिए हो चुकी थी। कलर्क से गलती ये हुई कि इसने रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर देखे बगैर ही इसे कर्नल वार्डेट को दे दिया। 3 दिन बाद इस सरकारी अफसर का तार मिला कि वो आ रहा है। तब हम सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। बाकी सारे कमरे बहुत दिनों से भरे हुए थे, हम किससे कहते कि वो अपना कमरा खाली करें। आखिरकार हम कर्नल वार्डेट के पास ही पहुंचे। इसने सुना तो आपे से बाहर हो गया। कहने लगा, तुम किसी ऑफिसर की बात कर रहे हो, यहाँ तो मेरे अलावा वजीर आजम भी नहीं रह सकता। हमने लाख सर पटका लेकिन वो ना माना। फिर मैंने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, क्योंकि मैनेजर का नजरा मुझ पे ही गिर रहा था। जिम्मेदारी मेरी थी, मेरी गफलत की बिना पर वो कमरा कर्नल वार्डेट को दे दिया गया था। मेरा हुलिया शायद इसे मायने खैज मालूम हुआ था। वो बेसाख्ता हंस पड़ा और बोला, अच्छा भाई, तुम्हारी खातिर फिलहाल ये कमरा छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसे लिख कर रख लो, इसमें मेरे अलावा कोई और नहीं रह सकेगा। हजारों रुए मेरे कब्जे में हैं और मैं कर्नल वार्डेट हूँ, ये नाम हमेशा याद रखना। बस जनाब, कर्नल वार्डेट चला गया। वो ऑफिसर साहब तशरीफ लाए, लेकिन इसी रात को इन्होंने वो चिखम धाड़ी मचाई के खुदा की पना। 2 बजे रात को इन्होंने कमरा खाली कर दिया। इसका ख्याल था कि कमरे में कोई बुरी रूह है। वो इसी वक्त किसी दूसरे होटल में चले जा गए। दूसरे दिन कर्नल वारिस फिर मौजूद नजर आया। वो कमरा इसी के इस्तेमाल में रहा। बस अब तो ये समझ लीजिए कि ये कमरा इसके बाकी जागीर बन के रह गया है। वो जब भी आता है इसी कमरा खाली ही मिलता है। वो कहाँ से आता है, हमीद ने पूछा। दारुल हुकूमत से। तो वो कोई बुरी रूह है? खुदा बेहतर जानता है जनाब, हमने तो आज तक कुछ ना पूछा ना देखा। खैर, अब ये बताओ कि अब क्या अब हम तुम्हारे ही कमरे में बिस्तर लगाएं? मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ जनाब, अगर मैनेजर साहब फरमाएं तो आप मेरी खोपड़ी पर भी उस तरह फरमा सकते हैं। सुपरवाइजर ने खुशगवार लहजे में कहा, मैं अगर मैनेजर साहब की जगह होता तो बताता इस कर्नल वार्डेट को, मगर इनकी तो इसके नाम से ही रूह फना हो जाती है। मैं कमजोर दिल का आदमी जरूर हूँ जनाब, मगर जिन बुत परी वगैरह इनसे मैं नहीं डरता। बस मेरे सामने चिख कर बोलना बोलिए, मैं इसे जोर से घुसा ना मारिए, मेरा दिल फौलाद का टुकड़ा बना रहे। जी हाँ जनाब। हमें थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा, फिर बोला, मेरे लिए किसी दूसरे होटल में इंतजाम करो, वरना फरोजा को जहन्नुम का नमूना बना दूंगा। कर्नल वार्डेट की ऐसी की तैसी, इसे भी देखूंगा। वो आज कल शाम में तशरीफ लाने ही वाले हैं। सुपरवाइजर मुस्कुराकर बोला, मेरे ख्याल में इन की रूहों ने इसीलिए आपको इस कमरे में नहीं टिकने दिया। हमीद सोचकर अब मैनेजर से जा टकराया, लेकिन फिर इरादा बदल दिया। फिलहाल यहाँ से चले जाना ही चाहता है, क्योंकि अभी वादी काजिक का मसला बाकी था। वो रासिफ आसिफ के पास आ गया। आसिफ अब भी इसी तरह कुर्सी की पुश्त से टका हुआ था। अब इसका सीना तो लोहार की डंकी नहीं मालूम होता था, लेकिन फटी फटी आंखों से अब भी खौफ झांक रहा था। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमीद ने कहा, और आसिफ ने चौंक कर पलके झपकाई। थोड़ी देर तक खाली जहनी के अंदाज में हमीद की तरफ देखता रहा, फिर बढ़ाई हुई आवाज में बोला, यही बेहतर है, मगर आजकल यहाँ किसी होटल में भी गुंजाइश नहीं निकल सकेगी। फिर हम वापस चलेंगे, आसिफ जो बहुत कुछ संभल चुका था मेज पर हाथ मारकर बोला। वापस चले जाएंगे? हमीद ने हैरत से दोहराया। नहीं तो फिर क्या, सड़कों पर डेरे डाल लेते हैं? सेठ जी, आप अपने खादिम की तोहिन कर रहे हैं, हमीद ने ऊपरी होंठ बीच कर कहा। यार मत परेशान करो, मैं तंग आ गया हूँ, वो जल्द पेंशन ले लूंगा। इस महम के बाद भी किसी यतीम खाने का मैनेजर का इरादा रखता हूँ। हमीद सर हिलाकर बोला, मगर इस वक्त मसला सब छुपाने का है, एक तजवीज है मेरे जहन में, लेकिन हमें एक गैर सरकारी आदमी के साथ कयाम करना पड़ेगा। मेरा दावा है इसने कम से कम 2 कमरे जरूर अरेंज किए होंगे, या कम से कम इतना बड़ा कमरा जरूर हासिल किया होगा जहाँ खुद कमा सके। ओ वो दियो तो नहीं जो? हाँ हाँ वही कासिम, शायद आप इसे जानते हैं, तुम्हारे ही सिलसिले में अक्सर इसका नाम सुनने में आया है। हाँ तो फिर आप क्या इसके साथ रह सकेंगे? मैं गधों के ठेकेदार के साथ भी रह सकता हूँ, मगर यहाँ इस कमरे में ठहरिए, मैं उसको फोन कर आता हूँ। हमें उठता हुआ बोला। इतने में वही लड़की जेबा तेजी से इनकी तरफ आई जिससे कुछ देर कबल इसने गुफ्तगू की थी। आप लोग वो कमरा छोड़ रहे हैं? इसने आसिफ से पूछा। जी हाँ, आसिफ ने बुखला कर जवाब दिया। फिर आप कहाँ जाएंगे? मेरा ख्याल है शायद आपको कहीं भी कोई कमरा खाली ना मिले। आपको कैसे मालूम हुआ कि हम कमरा छोड़ रहे हैं? हमीद ने पूछा। मैं आपसे बात नहीं कर रही, जेबा झुंझला कर बोली। सर साहब से मुखातिब हूँ, एक ही बात है, आसिफ ने खुश होकर कहा, ये मेरे सेक्रेटरी हैं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, अभी सुपरवाइजर ने बताया कि आपको भी वहम ने घेरा है और आप कमरा छोड़ रहे हैं। अरे ये बात नहीं है, आसिफ अकड़ कर बोला, मुझे तो जरा बराबर भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं सेक्रेटरी के बगैर कैसे रहूंगा? ये हजरत भाग निकलेंगे, इन्होंने किसी औरत को गाते सुना था। यूं तो मैंने भी किसी औरत की आवाज सुनी थी, मगर मैं क्या करता, मैं डरता तो नहीं, मेरा तो दम निकला जा रहा है, हमीद ने कांपती हुई आवाज में कहा। आसिफ आंखों ही आंखों में इसका शुक्रिया अदा कर रहा था, गालबन इसे डर था कि कहीं हमीद अपने असली रूप ना दिखाना शुरू कर दे। रहाइश का इंतजाम तो हो सकता है, जेबा ने सोचते हुए कहा, लेकिन अखराजात ज्यादा होंगे। अखराजात की परवाह मत करो, हमें अखराजात की परवाह कभी नहीं हुई, आसिफ अकड़ कर बोला। क्या समझे? हमीद जेबा को आंख मारी। देखिए देखिए, ये जेबा उछल पड़ी, क्या बात है, इन्होंने अभी मुझे आंख मारी थी, सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं। सेक्रेटरी आसिफ को सचमुच गुस्सा आ गया। अब नहीं मारूंगा, हमीद ने मुर्दा सी आवाज में कहा। वैसे इसे खुशी थी कि लड़की रंग पर आ गई है और अब वो आसिफ के पीछे हिसाब बेबाक कर सकेगा। लड़की फिर आसिफ की तरफ मुतवज्जा हो गई। छुरी पैक, ये मेरी बेवा चच्ची का एक हट है, मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगी, लेकिन आपको कम से कम 15 रुपए महाना अदा करना पड़ेगा, और सीजन खत्म होने से पहले आप हट नहीं छोड़ेंगे, मेरी खिदमत मुफ्त सरसत के औकात में आपके काम कर दिया करूंगी। बात दरअसल ये है कि चच्ची की माली हालात खराब है, इस तरह इनकी मदद भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आसिफ ने सर हिलाकर कहा। क्यों सेक्रेटरी? कई बार बिल्कुल सेठ साहब, हमीद बोला। देखें, आपने जेबा बुरा सा मुंह बनाकर बोली, आपके सेक्रेटरी को गुफ्तगु करने का तरीका भी नहीं है। सर चढ़ा है, तुम इसकी भी फिक्र ना करो, आसिफ ने शानाना अंदाज में कहा। हमीद ने दिल ही दिल में इसे एक गंदी सी गाली दी। आप अपना सामान समेटिए, मैं गाड़ी का इंतजाम कर आती हूँ, जेबा ने कहा और बाहर चली गई। हमीद अपने होठों पर जबान फेर रहा था। ये लड़की मुझे उलझन में मुबतला कर रही है, इसने कुछ सोचते हुए कहा। अपने पास रखो अपनी उलझने, आसिफ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, और मोहतात रहो, हम यहाँ सड़कों पर पड़े रहने के लिए नहीं आए, 1000 रुपए योमिया भी महकमा को अदा करने पड़ेंगे, इस किस्म के काम हंसी खेल नहीं होते। वो तो ठीक है, हमीद ठंडी सांस लेकर बोला, लेकिन लड़की इसको देखकर मेरे दिल में न जाने क्या होने लगता है। हमीद साहब, सैदी नहीं हूँ, आपको मेरा पाबंद रहना पड़ेगा, समझे? समझ गया, हमीद मुद्दा सी आवाज में कहा। आप इस लड़की से छेड़छाड़ नहीं करेंगे? हरगिज नहीं, आप कहेंगे तो दाढ़ी छोड़कर घेरदार शलवार पहनना शुरू कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा इस दिल का, दिल नामुराद को, ड्यूटी ऑफिसर ऑल ड्यूटी। इतने में एक वेटर ने आकर हमीद से कहा, आपका ट्रंक कॉल है मिस्टर साजिद। हमीद काउंटर की तरफ मुड़ गया। ट्रंक कॉल फरीदी के अलावा और किसकी हो सकती है? हमीद ने रिसीवर काउंटर क्लर्क के हाथ से ले लिया। हेलो, वो माउथपीस में चीखा। कैप्टन हमीद, दूसरी तरफ से आवाज आई। ये आवाज तो फिसल निस्वानी थी। हमीद उछल पड़ा, ये तो वही आवाज थी। कतई वही आवाज जो इसने कुछ देर पहले आसिफजादा कमरे में सुनी थी। कौन? हमीद ने फटी फटी आवाज में बोला। मैं साजिद हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है, नहीं तुम कैप्टन हमीद हो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं इंटरनेशनल आर्ट गैलरी में एग्जीबिशन से चराही बोल रही हूँ। कमरा छोड़कर क्यों भागे जा रहे हो प्यारे? मैं तुमसे इश्क करूंगी, तुम्हें भी मुसव्वर बनाऊंगी। बहुत सदा लड़की। हमीद के सारे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इंटरनेशनल आर्ट गैलरी एग्जीबिशन तो खैर इसके जहन की दस्तक से बाहर नहीं थी। इसे इल्म था कि दारुल हुकूमत में मुसव्वरी की बैन अल-अक़वामी नुमाइश हो रही है, लेकिन ये चराही वाला क्या बला थी और इसे मुसव्वरी सिखाने का क्या मतलब था? ये क्या बकवास है, हमीद ने जी कड़ा कर कहा। ये किसका कमरे का तस्करा है? अरे घंटी हुई सी हंसी के साथ आवाज दूसरी तरफ से आई। फिर कहा गया, क्या तुम मेरे खौफ से कमरा छोड़कर नहीं भाग रहे? पता नहीं तुम क्या ऊट पटांग बकवास कर रही हो, खुदा जाने तुम्हारा मुखातिब कौन है। मैं साजिद हूँ, तुमने जो नाम लिया है वो गलत है। मैं बेचारा सेठ हाशिम भाई का सेक्रेटरी हूँ, आसिफ से बड़ा गधा भी आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। दूसरी तरफ से आवाज आई और हमीद ने झंझला कर रिसीवर डायरेक्टर पर पटक दिया। हमीद सोच रहा था कि अगर वो कोई बुरी रूह है तो इनसे क्या चाहती है। फिर वो आसिफ की तरफ पलट आया जो इसे उकताई हुई नजरों से देख रहा था। कौन था फोन पे? आसिफ ने पूछा। मेरी चची जान, हमीद ने ठंडी सांस ली। इनके शोहर के साले की तबीयत बहुत खराब हो गई है, फिर बेकार की बातें करने लगे हो। ये मेरा निजी मामला है सेठ, मैं अपनी चची जान के शोहर के साले के बिनोई के हमजुल के ससुर की भी अरायत की इतला वसूल कर सकता हूँ, कोई मुझे इससे रोक नहीं सकता। यार खत्म करो, लड़की ने अभी इतला भिजवाई है, इसने सवारी का इंतजाम कर लिया है, अब चलो सामान समेटो। हमीद चुपचाप इसके साथ कमरे में चला आया। अच्छा बैठो, अच्छा बेटा सेठ जी, हमीद बड़बड़ाया, तुम भी क्या याद करोगे, बड़ी डींगे मार रहे थे ना लोंडिया के सामने, अब मैं तुम्हें देखूंगा। फिर भी वो हाथ पर हाथ रख कर बैठ गया, पाइप में तम्बाकू भरकर इसे सुलगाकर हल्के हल्के कश लेता रहा। आरामदेह कुर्सी की पुश से टिक गया। थोड़ी देर बाद बाहर से कदमों की आवाज आई, लेकिन हमीद ने मुड़े बगैर देखने की भी जहमत दोबारा नहीं की। और ये हजरत यही तशरीफ फरमा है, इसने ज़ेबा की आवाज सुनी, लेकिन इसकी पोजीशन में तब्दीली ना हुई। इसी तरह आरामदेह कुर्सी से पुश से टेक लगाए हुए पाइप के कश लेता रहा। ये खुद भी भूत ही है, आसिफ की बहराई हुई सी आवाज में कमरे में गूंजी। हमीद होंठों से पाइप निकाला और होंठ सिकोड़कर इनकी तरफ देखे बगैर बोला, हर हाल में औरत का गुलाम हूँ सेठ साहब, चाहे वो चिड़ैल ही क्यों ना हो, वो इस वक्त भी मुझे एक फिल्मी गीत सुना रही है। ये हकीकत भी थी, कोई औरत होले होले इसके कानों में मुसलसल गा रही थी, अजी चले आओ अजी चले आओ। मैं तो कुछ भी नहीं सुन रही, ज़ेबा ने कहा। इस वक्त तो मैं भी कुछ नहीं सुन रहा, आसिफ बोला, लेकिन अगर इस वक्त कोई मुझसे मेरा नाम पूछे तो मैं हर हाल में फोन बताऊंगा, हमीद ने लापरवाही से कहा। अरे अब उठोगे भी? आसिफ झिंझला कर बोला। पूरा गीत सुनने के बाद, फिल्म हलाकू एक तरह गीत है जिसने हलाकू को हलाकू बनाया था, वरना आइंदा नस्लें इसे शेख चिल्ली कहती। तुम झूठे हो, ज़ेबा ने कहा। आओ मेरे करीब आकर बैठ जाओ, तुम्हारे मुकद्दर में होगा तो तुम भी सुन लो, हमीद बोला। ज़ेबा आगे बढ़ी और आरामदेह कुर्सी के करीब फर्श पे अकड़ू बैठ गई। हमीद ने इसके चेहरे का रंग उड़ते देखकर अंदाजा कर लिया, वो भी इस गीत से महरूम नहीं है। मेरे खुदा, ज़ेबा यकबेक उछल कर दरवाजे की तरफ भागी। आसिफ जो पहले ही से बावर हुआ था इसे बुरी तरह टकराया, वो दो चीखें यकबेक कमरे में गूंज उठी। खुदा गारत करे, हमीद झंझला कर खड़ा हो गया। सेठ आपको कभी आदमी नहीं बन सकते, आर्ट से महफूज होने का सलीका आप में कभी नहीं पैदा हो सकता, इतना हसीन गीत का बेड़ा गर्क कर दिया है। फिर वो दोबारा हाथ हिला हिलाकर बड़े दर्दनाक लहजे में कहने लगा, गाओ गाओ ए रुए बहार, गाती रहो, तुम्हारे रग में रूह की जड़ों में उतरते चले जाते हैं। खुदारा मेरे कानों में शरबत घोलती रहो। आसिफ और जेबा राजदेहरी में खड़े आंखें फाड़ फाड़ कर इसे देख रहे थे। अरे निकलो यहाँ से, आसिफ दोनों हाथों हिलाकर चीखा, क्या तुम पागल हो गए हो, आपको खुद निकल जाइए, हमीद आंखें निकाल कर बोला, मैं रुए बाहर को नहीं छोड़ सकता, माना कि आप मेरे वालिद हैं, फिर इससे क्या, वो जमाने में गुजर गए जब औलाद अपनी महबूबों का तस्करा बापों के सामने नहीं लाती थी, ये 20वीं सदी है अब्बाजान, क्या आपने कभी इश्क नहीं किया। आसिफ बौखला कर सर पर हाथ फेरने लगा, वक्तन इसके कानों में आवाज आई, दफा हो जाओ तुम लोग, 15 मिनट के अंदर अंदर कमरा छोड़ दो, वरना बड़े खसारे में रहोगे, निकलो। आसिफ कांपता हुआ सामने वाली दीवार से जा लगा। क्या हुआ सेठ, जेबा ने पूछा। कुछ नहीं, खुदा के लिए इसे किसी तरह कमरे से निकालो, इसका दिमाग उलट गया है शायद, आसिफ का साया हो गया है, खबरदार अगर किसी ने कमरे में कदम भी रखा। हमीद धाड़ा, जलाकर खाक कर दूंगा, इस वक्त चांद सूरज मेरी मुट्ठी में है और रुए बहार मेरे गिर्द रक्स कर रही है, चले जाओ चले जाओ, वो चीखता रहा, चले जाओ चले जाओ, फिर चकरा कर गिर पड़ा, दांत पर दांत जमा लिए और जिस्म इस तरह अकड़ लिया, उठाए जाने पे शायद किसी पत्थर की बुत की तरह सीधा उठता चला गया। ओह ये क्या हुआ, इसने आसिफ की गिलकीर आवाज सुनी, शायद बेहोश हो गया है, जेबा की आवाज आई, ठहरिए मैं आदमियों को बुलाती हूँ, आप बिल्कुल ना घबराइए। फिर सन्नाटा छा गया और वो इसी तरह चारों शाने चुप पड़ा रहा। कुछ देर बाद इसे अपने जिस्म की अकड़न के कलमात दिखाने पड़े, फिर इस वक्त की बात है जब इसे फर्श से उठाने की कोशिश की जा रही थी, मेरे खुदा जिस्म बिल्कुल पत्थर का होकर रह गया है, किसी ने कहा, और फिर हमीद को थोड़ी देर तक दोनों हाथों पर सफर करना पड़ा। डाइनिंग हॉल के फर्श पर एक कंबल बिछाया गया और हमीद को स्पेल डाला गया। डॉक्टर इस पर डाल दिया गया। इसके बाद डॉक्टर ही की बारी थी। तकरीबन एक घंटे तक यही सब कुछ रहा। डॉक्टर ने उसे 3 इंजेक्शन दिए जिसके से अपने अंदर अंगारे भरे हुए मालूम होने लगे, लेकिन इसकी पेशानी पर शिकन तक नहीं आई। फर्ज है कि बड़ी मुश्किल से उसे होश आया। शायद वो आसिफ को बोर करने के लिए बेहोशी की मुद्दत तवील कर देता, मगर अब वो खुद भी बोर होने लगा था। फिर वो आधे घंटे तबीयत संभाले लग गया। इसके बाद वो एक बड़ी सी वैन में बैठकर चोरी कैब की तरफ रवाना हो गए। हमीद बिल्कुल खामोश था। आसिफ और जैबा इसे फटी फटी नजरों से देख रहे थे। चोरी कैब का सफर ज्यादा तवील नहीं था, आधे घंटे में वहां पहुंच गए। चोरी कैब बड़ी खुशफजा जगह थी, यहाँ जगह जगह लकड़ी के रंगीन हट नजर आते थे। हमीद सोच रहा था कि जैबा की बेवा चच्ची भी बड़ी ग्रेट औरत मालूम होती है जिसने चोरी कैब पर हट बना रखा है। ये हट 3 आदमी पर 3 कमरों पे मुश्तमिल था। यहाँ हमीद को एक बूढ़ी औरत नजर आई जो इस उम्र में भी खासी बचिया थी। खुदाखाल पीछ पीछ कर कह रहे थे कि वो अपने हुक्म मनवाने की आदी है, शादर नादर मुस्कुराती भी होगी। इसने इनका इस्तकबाल किया खंदा पेशानी से और काफी देर तक अपने हट के मुतालिक खासाना अंदाज में गुफ्तगु करती रही, जिसका लबे लबाब यही था कि इन्हें यहाँ आराम जरूर मिलेगा, ख्वा इस हट में दुनिया भर की बलाएं ही क्यों ना हो। फिर हमीद की तरफ देखकर पूछा, इन्हें क्या हुआ है, क्या ये बीमार हैं? ओ हाँ आंटी, जैबा ने कहा, इन पे क्लब के दौरे पड़ते हैं। आंटी ने चेहरे पे उदासी तारी करके, बड़ा नामुराद मर्ज है, खुदा महफूज रखे। अरे भाई क्या हुआ, आसिफ झंझला कर बोला, जब से हमीद हिस्सियाँ लेता हुआ हल्काने लगा, जब से मेरी माँ का इंतकाल हुआ है मैं बूढ़ी औरतों को देखकर इसी तरह रोने लगता हूँ। क्या बात हुई, आसिफ ने आंखें निकाल कर बोला, हाय मैं सोचता हूँ ये भी जल्दी मर जाएंगी। हमीद हिचकियां लेता हुआ बोला, जेबा वे सख्ता हंस पड़ी। क्यों दांत निकालती है लड़की? आंटी ने चीख कर कहा। शायद हमीद की बेकारी गिरा गुजरी थी। थोड़ी देर बाद वो सब अपने ठिकानों पर पहुंच गए। हमीद और आसिफ अलग अलग कमरों में थे और जैबा की आंटी ने यह तजवीज पेश की थी, अगर तीसरे कमरे को ये खुद इस्तेमाल करती रहे तो क्या हर्ज है, इस तरह इन दोनों की देखभाल भी हो सकेगी। कोई हर्ज नहीं, आसिफ ने जैबा से कहा, ये बड़ी अच्छी बात है। इतने में हामिद भी आसिफ के कमरे में पहुंच गया और भराई हुई आवाज में कहने लगा, इससे परेशान कुन और क्या बात हो ही सकती है? क्या मतलब? आसिफ भना गया, मैं सुबह से शाम तक जोरो कतार होता ही रहूं। यार हद, हेल्प सेक्रेटरी तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, मैं वहां जा रहा हूं। हामिद ने खिड़की से अफक की तरफ इशारा किया, तू बाहर गा रही है, अजय चली आओ, अजय चली आओ। मैं जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। फ्तन आसिफ के चेहरे पे तशवीश के आसार नजर आने लगे। जैबा भी मोहते से दिखाई देती थी। बड़ी मुसीबत है, आसिफ बड़बड़ाया, मैं तो समझा था कि अब ये ठीक हो गया है, और मैं सोचती हूँ कि अगर आंटी को इस कर्म हुआ, इन पर आसिफ का साया है, वो आप लोगों को यहाँ टिकने नहीं देंगी। और हामिद यही चाहता भी था। पहले इसने सोचा था कि कासिम के साथ हो जाएगा, फिर मजे ही मजे, मगर ये जैबा गैर मतवक तौर पर दरमियान में आ कूदी। देखो भाई आसिफ, हामिद से कहा, तुम अपनी रूए बहार के मुतालिक दिल ही दिल में सोचते रहो, जबान से कुछ ना कहो, वरना हम सब यहाँ से भी निकाले जाएंगे। मैं जबान से कैसे ना कहूँ, चांद से कहिए कि वो चमकना छोड़ दे, चांदनी ना फैलाए, पानी से कहिए कि वो बहता रहे लेकिन प्यास ना बुझाए, बारा सिंगा से कहिए वो बारा सिंगा ले ले। हामिद थोड़ी खिजाता हुआ कुछ सोचने लगा, फिर चौंक कर बोला, हाँ तो मैं अभी क्या कह रहा था, तुम सिर्फ बकवास कर रहे थे, मगर मैं कह रही हूँ कि कहीं तुम्हें सरकारी तौर पर पागलखाने ना भिजवा दिया जाए। इसने यही कहा था, तुम्हें पागलखाने में मिलूंगी, मुझे वहीं भिजवा दीजिए अब्बा जान, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अब्बा जान, इसने कुछ ऐसे अंदाज में कहा था कि जैबा हंस पड़ी। जाहिर है इस पर आसिफ ने अंगारे ही चबाए होंगे। जाओ जाओ तुम अपने कमरे में, वो इसे दरवाजे की तरफ धकेलता हुआ बोला। हामिद ने मजामत नहीं की, चुपचाप अपने कमरे में वापस चला आया। वो बेताशा कहके लगाना चाहता था क्योंकि आसिफ को बकरा बनाने में कामयाब हो गया था। ये सब कुछ था, मगर वो आवाज मुस्तकिल तौर पर उलझन का बाइस बनी गई थी। इसने फोन पर उसे साफ पहचाना था, वह आसिफ ज्यादा कमरे वाली आवाज से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर नेशनल आर्ट गैलरी और चराही का क्या मकसद, इसे इस सिलसिले में फ्रेडी से फोन पर गुफ्तगू करनी चाहिए, मगर किस वक्त और कहाँ। यहाँ इस हट में फोन नहीं था। वो सोचता रहा। कुछ देर बाद सरारत की धूप और सरार कर्नल वार्ड की तरफ मुड़ी। वो कौन था? वो अक्सर बेस्तर टेकम गेट क्यों आया था? अपनी किसी स्याह रूह से फिरोजा का एक कमरा क्यों बेकार कर दिया था? फिरोजा का अलमा इससे गायब भी रहता है। अब हामिद ने सोचा कि इन सवालों के जवाब मुस्तकिल तौर पर पागल बने रहने से ना मिल सकेंगे, इसलिए कभी कभी होश की बातें भी करनी चाहिए। लिहाजा दूसरी सुबह जब वो सोकर उठा तो आसिफ ने इसकी गैर मामूली बात नहीं देखी, सवाए इसके कि वो इस हट में अपनी मौजूदगी पे हजारे हैरत कर रहा था। नाश्ते की मेज पर जैबा की आंटी भी मौजूद थी। हामिद आसिफ से इसके मुतालिक कुछ ना पूछा, लेकिन चेहरे के उतार चढ़ाव इसे समझा गया कि वो इस बूढ़ी औरत को भी हैरत से देख रहा है। अब आपकी तबीयत कैसी है जनाब, बूढ़ी ने पूछा। जी ठीक हूँ मोहतरमा, हामिद ने ऐसे ही अंदाज में कहा जैसे अपने जवाब से मुतमिन हुआ हो या जवाब यूं ही समझने बूझे बगैर दिए हों। नाश्ते के बाद बूढ़ी औरत चली गई और आसिफ ने हामिद से पूछा, यार अब तुम ठीक हो ना, मुझे क्या हुआ है? हामिद ने हैरत से कहा, लेकिन हम यहाँ कब और कैसे आए? ये गालबन चिड़ी कैप है, मगर जैबा कहाँ है? आसिफ ने इसे बताया, इस आसिफ ज्यादा कमरे में इस पर क्या गुजरी थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। किताब जासूसी दुनिया जिल्द नंबर 26 नावल नंबर 79 चांदनी का धुआं। इख्तिताम पजीर हुआ, बकिया हिस्सा पार्ट 5 में समाप्त फरमाइए।